मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 4 मार्च 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आइए आशीर्वाद वाले विषय को ही आज हम सब आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप आशीर्वाद किसी से लेते हैं और कोई जब आपको आशीर्वाद देता है तो उसके बीच की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होती है और साथ ही इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो जो प्रभाव पड़ता है इसे तो आप महसूस कर सकते हैं, हो सकता है कि जिस प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं उसे आप महसूस न कर पाते हो क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। इससे पहले आशीर्वाद के बारे में मैंने जितनी भी बातें की थी सच पूछिए तो वो आज की बातों तक पहुंचने का एक माध्यम ही था कि आपकी पृष्ठभूमि इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बन जाए और मुझे यकीन है कि आपकी पृष्ठभूमि बन भी गई होगी और आज जो भी बातें मैं आपसे करूंगा इन्हें शायद आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। दोस्तों देखिए होता क्या है, याद कीजिए इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सिर्फ औपचारिकता वश आशीर्वाद की प्रक्रिया को निभा रहे हैं एक परंपरा के तहत तो ये मान करके चलिए कि इससे कुछ भी होना जाना नहीं है, लेकिन एक बात तो हो ही जाती है कि कोई आपसे नाराज नहीं होगा, कोई आपसे शिकायत नहीं करेगा क्योंकि आपने पैर छू लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक अवसर आपको मिला है तो उस अवसर का भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए। भले ही आप ये कह लीजिए कि ये तो अवसरवादिता हो गई, लाभ आप तो प्रॉफिट और लॉस की भाषा में बात कर रहे हैं, नहीं, अगर हम कोई एक अच्छा काम करके और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उससे लाभ अर्जित कर सकते हैं तो उसमें हर्ज क्या है। और हमारी जो जिंदगियां हैं वो सच में जिसे हम उपलब्धियां कहते हैं वो इन छोटे छोटे लाभों से ही मिलकर के बनी होती है, तो उसमें गलत क्या है। तो दोस्तों देखिए जैसे ही आप भावना के स्तर पर जुड़ करके किसी के भी आशीर्वाद के लिए पैर छूते हैं तो ये मान करके चलिए कि जिस तरह की भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है उसी के अनुकूल आपके अंदर किरणों का जन्म होता है जिसे आप रेज कहते हैं। नो डाउट जैसा कि मैंने कहा था कि शुरू में तो कोई विचार आपके मस्तिष्क में आया होगा, आता ही है। जैसे मान लीजिए आप जब किसी के पैर छूने जाते हैं तो आपके दिमाग में एक विचार आता है कि मैं अपने पिता के पैर छू रहा हूं, मैं अपने पिता के मित्र के पैर छू रहा हूं, मैं अपने गुरु के पैर छू रहा हूं, मैं अपने पिता के गुरु के पैर छू रहा हूं। और आप महसूस करेंगे कि इस थॉट के अनुकूल ही आपके अंदर फिर भावनाएं पैदा होती हैं, है ना। किसी की बड़ी आप गर्मजोशी के साथ पैर छूते हैं, किसी के थोड़े से अनमने भाव से छू लेते हैं, किसी के अनजाने में छूते हैं आप मैकेनिकल तरीके से, तो इन सब का जो संचालन करने वाला जो तत्व है वो विचार है। लेकिन आप सिर्फ विचार के वशीभूत होकर के छूएंगे तो कुछ नहीं होना जाना है। जब वे विचार आपके अंदर भावनाओं को जन्म देंगे, इमोशनल लेवल पर गहरे उतरेंगे, तब फिर आपके अंदर से किरणों जन्म लेंगी, किरणें पैदा होंगी और इन किरणों में इतनी ताकत होती है कि ये आपके बॉडी की चारों तरफ फैल जाती हैं और यहां तक कि ये ट्रेवल करके सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। अब ये बात अलग है कि सामने वाला भी उसे एहसास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह एहसास नहीं कर पा रहा है तो भी उसके व्यवहार में, उसके इमोशंस में, उसके थॉट्स में उसका असर जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि वह इसके प्रभाव से बिल्कुल अप्रभावित रह जाएगा। तो जब आप इमोशनली चार्ज्ड होकर के किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं तो आपके अंतर मन से बहुत ही प्रभावशाली किरणें उत्पन्न होती हैं और वे किरणें ट्रेवल करके सामने वाले तक पहुंचती हैं और सामने वाले में पहुंचकर वे किरणें उसी तरह की सकारात्मक किरणों को वहां जन्म देती हैं और जब किरणों का जन्म वहां होता है तो वो ट्रेवल करके आप तक आती हैं, यानी कि उस पूरे के पूरे माहौल में सकारात्मक ऊर्जा का एक खूबसूरत घेरा बन जाता है, खूबसूरत घेरा बन जाता है। और ये सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी हैं और क्या क्या कर सकती है मित्रों, ये तो बहुत ही बड़ा विषय है, अलग से एक विषय हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर तो आप इसके महत्व को समझ ही सकते हैं। अब आप देखिए कि इसका एक दूसरा पक्ष क्या है। दूसरा पक्ष इसका यह है जो मुझे लगता है कि कहीं इससे भी ज्यादा प्रबल है और यह बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बात है। जब आप किसी के पैर छूते हैं तो इसका मतलब है कि यह सम्मान का हाईएस्ट लेवल है, आप उसका इतना ज्यादा रिगार्ड कर रहे हैं। इससे ऊंचा तो कुछ और है ही नहीं। भगवान के सामने हम थोड़ा सा ऊंचा इस मायने में होते हैं कि हम साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है, पैर छूना, उससे थोड़े से ऊपर की, मतलब उससे थोड़े से नीचे की बात हो गई कह लीजिए, इसके बाद साष्टांग प्रणाम ही करना रह जाता है। ठीक है, चलिए हम पैर छू रहे हैं, क्योंकि साष्टांग प्रणाम करना व्यावहारिक दृष्टि से हर जगह संभव नहीं है कि कहीं भी पिताजी मिल गए, गुरुजी मिल गए और पता लगा कि सड़क पर मिले हैं और हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अव्यवहारिक भी हो जाता है। तो मानवीय जीवन में आप कह सकते हैं कि जो आशीर्वाद लेने की हमारी परंपरा है वो सम्मान देने का सर्वोत्तम तरीका है, सर्वोच्च तरीका है। तो अब आप देखिए कि जब आप किसी के पैर छू रहे हैं तो व्यवहारिक स्तर पर आप उसे एक मौन सम्मान दे रहे हैं, या कह लीजिए कि उसकी मौन प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा है कि मैं उसे हृदय से प्रणाम कर रहा हूं, उसके सामने मैं नतमस्तक हो रहा हूं। इससे बड़ी आप उसकी प्रशंसा क्या कर सकते हैं, और वह भी आपको इस रूप में देख करके मन ही मन खिल उठता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मन ही मन खुश हो उठता है, मन ही मन वो खिल उठता है, वह इस आपकी बात को अपने लिए की गई प्रशंसा के तौर पर लेता है। अब आप कहेंगे कि यार प्रशंसा से ये खुश हो रहा है, कैसा आदमी है भैया। सोच करके देखिए कि जो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की जो आप आरती करते हैं, जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जरा इनके कभी अर्थ को समझने की कोशिश तो कीजिए कि उसके तहत आप कर क्या रहे हैं, सिवाय ईश्वर की प्रशंसा के आप उनसे ईश्वर का गुणगान ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ईश्वर का गुणगान, या ईश्वर का गुणगान या फिर आप अपनी दीनता का बखान, बस यही करते रहते हैं, है ना, कि मैं कितना हीन हूं और तुम कितने महान हो, सब कुछ तो इसी के तौर पर है। तो जब ईश्वर अपनी प्रशंसा से खुश हो सकता है, आप तभी तो प्रशंसा कर रहे हैं ना ईश्वर की उनको खुश करने के लिए, तो हम सब तो भैया छोटे छोटे मनुष्य हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, तो इसमें हर्ज क्या है अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो। हाँ, जो आपकी प्रशंसा है वो चापलूसी नहीं लगनी चाहिए, तो यहां तो कहे तो कुछ रहे ही नहीं है, तो चापलूसी की क्या बात है। तो जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से अपने आप को जोड़ लेते हैं, उस व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है और वो आपसे फिर कनेक्टेड महसूस करने लगता है। यहां भी एक अदृश्य तार दोनों के शरीर से निकलते हैं, दोनों के विचारों से निकलते हैं, दोनों के मस्तिष्क या कह लीजिए हृदय से निकलते हैं और वो आपस में जाकर के जुड़ जाते हैं, और जब ये अदृश्य तार आपस में जुड़ते हैं तो फिर ऊर्जा का संचार प्रवाह होने लगता है, एक दूसरे की तरफ ऊर्जा आने जाने लगती है, वहां से फिर से आपको ताकत मिलती है। और दोस्तों आखिरी बात यह कि जब आपकी किसी के साथ एक कनेक्टिविटी बन जाती है, इस तरह का अदृश्य संपर्क बन जाता है, तो आपको नहीं लगता कि देखिए जो आप पैर छू रहे हैं वो तो आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा ना हो किसी और मायने में बड़ा होगा तभी आप पैर छू रहे हैं, तो चूंकि वह बड़ा है और उसकी कनेक्टिविटी आपके साथ बन गई है, तो डेफिनेटली जानिए कि वह आपके प्रति दायित्व बोध से भर जाएगा, वो ये मानने लगेगा कि नहीं इसके प्रति मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जब भी जीवन में उसे मौका मिलेगा कि वह आपके लिए कुछ करे, आपको कुछ लाभ पहुंचाए, तो डेफिनेटली मान करके चलिए कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों ये क्या कम बड़ा लाभ है। फ्रेंड्स, तो अब मैं जो भी आशीर्वाद के बारे में आप सबसे कहना चाह रहा था लगभग मैं कह चुका हूं। यदि आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो आप ईमेल के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी के साथ ही अब इस विषय को मैं आज यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।